देखिए दो जो जख्मी है उनके हाल तश्वीशनाक बताई जाती है, एक शवदेह हलाक हुआ जबकि दीगर नौ के बारे में पुलिस का कहना यह है कि उनकी जो हालत है वो इस वक्त खतरे से बाहर है।
A bus carrying people who wished to join the Al Quds rally in Karachi met with a bomb attack as it passed Safari Park on University Road. One person was killed and 20 others were injured due to the explosion. Police say the bomb was planted by the roadside near the KESE substation. According to eyewitness accounts, prior to the explosion, the bus was also fired upon.
कराची के इलाके सफारी पार्क में अलकुद्स रैली में शिरकत के लिए जाने वाली बस के करीब धमाका, एक शख्स जहां बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। कमिश्नर कराची का कहना है कि धमाका के इस मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था।
एम्बुलेंस कम आई हुई थी, अचानक से एम्बुलेंस आना शुरू हुई, उसके बाद गाँव डाक ले जाना पड़ा। गाड़ी के शीशे टूटे, दो बसे जो है ना बसों जख्मी थे, काफी सारे रोडों के ऊपर पड़े हुए थे जख्मी।
जैसे ही यहाँ पर इत्तला पहुँची है, यहाँ पर लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगा के उस बात का इजहार किया है। उनका कहना ये था कि कराची के अंदर शियाओं की रैली के ऊपर जो जानबूझ के जो हमला किया गया है, उनका कहना ये था कि बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जो कि इस्तेमाल के एजेंट हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जब लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त रैली में इनकी आमद का सिलसिला जारी है।
दुनिया भर में फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती और बैतुल मक़दस क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे यानी जुमतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर आलमी सतह पर तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में मनाते हैं। इसी चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है, इसी चीज़ ने सहयोगियों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। लिहाजा जब कभी ये दिन करीब आता है, पूरी दुनिया में कोशिश होती है और खुसूसन बरे सगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान के अंदर खुसूसी कोशिशें होती हैं ताकि इस दिन को मनाए जाने की राह में रुकावटें खड़ी की जाएं और लोगों को डराया जाए, लोगों को मैदान में आने से रोका जाए, जिसके लिए कभी क्वेटा के यौमुल कुद्स के उस वाक़े की तरह से 80-80, 90-90 बेगुनाह रोज़ादार लोगों को जामे शहादत नोश करना पड़ती है और उसके नतीजे में ये आवाज़ मज़ीद ज़िंदा हो जाती है। और उसी तरह से जिस तरह से आज का वाक़या आपके सामने है और नतीजतन अब तक दो हमारे जवान मंजूर और इम्तियाज़ जामे शहादत नोश करके अपने रब की बारगाह में पहुंच चुके हैं और उनके बाद चार हमारे जवान इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल का शिकार हैं। ये एक रुख है और दूसरा रुख कल का वाक़या है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले उन मुसाफिरों को जो रोज़ादार थे, जिनमें कारियान कुरान शामिल थे, जिनमें हाफिज़ान कुरान शामिल थे, गाड़ी से उनको उतारा गया, उनके शिनाख्ती कार्ड्स चेक किए गए, चेक किए जाने के बाद चुन चुन कर उन लोगों को अलग कर दिया गया जो आज की दुनिया में सहयूनियत, अमरीकीत और साम्राज्यत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मकतबे अली के फर्जंद, उनको अलग किया गया और अलग करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया और फिर इस्लाम का नारा लगाने वाले लोग जिन्होंने तालिबान का नाम अपना रखा है, उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हम आज के वाक़े को भी और कल के वाक़े को भी एक ही समत में एक ही हरकत का हिस्सा समझते हैं। कभी शिया सुन्नी का नाम देकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये कोई इस्लामी मसला नहीं है। इस मसले के पीछे अगर कोई कुव्वत फ़आल है तो वो कुव्वत अमेरिका है, वो कुव्वत इसराइल की सहयूनी रियासत है और हमारे खित्ते के अंदर इंडियन रियासत है। अब ये अफसोस का मकाम है कि उनकी उन साजिशों का शिकार होने वाले लोगों ने यहाँ पर मकामी तौर पर मुसलमानों का लिबास पहना हुआ है और चंद रियालों और चंद डॉलरों के एवज़ वो अपने मुल्क के अमन को भी तबाह कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की बदनामी का भी बाइस बन रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि आज के कराची के केस के हवाले से अमरीकी कौंसल जनरल को हम अपना फरीक समझते हैं। और ये समझते हैं कि इसराइल का तहफ्फुज़ उनका सबसे बड़ा नारा है। और आज का जो प्रोग्राम था, आज की जो रैली थी, वो इसराइली गासिब हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। और इस सिलसिले में जो भी ऐसा कदम उठाया गया वो अमरीकियों के खाते में जाता है और अमरीकी उसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए FIR भी उन्हीं के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह ताला कटवाई जाएगी।
जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अदालत के कटहरे में आकर जो है वो अदालती कार्रवाई में शामिल हो सकता है, तो गैर मुल्की सफ़ीर क्यों नहीं आ सकता? कि हमारा पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको समझते हैं कि ये हमारे खून में इसके हाथ रंगीन है और हम ये समझते हैं कि ये हमारा कातिल है और ये असल फसाद और बुराई और तबाही बर्बादी की जड़ है, तो ये हमारा हक पहुँचता है, हमारा कानूनी और शहरी हक है कि हम उसका नाम FIR में दें और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसे पूरा करें।
बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हजरत इमाम खुमैनी की आवाज पर पाकिस्तान के मुसलमानों की जानिब से अपने फलस्तीनी भाइयों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज हमारे शहदाए अल-कुद्स की नमाज जनाजा में जिना रोड पर हो रही है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके एक दफा फिर अमरीका और इसराइल और पाकिस्तान ने उनकी जिहादी तंजीमों, तकफीरी कुव्वतों, कलादम जमातों की नाबूदी के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके अपने मुश्तरक दुश्मन को फरामोश न करें, यानी अमरीका मुर्दाबाद, यानी सदाओं में कमी नहीं आनी चाहिए।
पूरी कुव्वत के साथ, क्योंकि इनके जनाजों के कातिल अमरीका और इसराइल है, अपनी आवाज को अमरीका और इसराइल तक पहुंचाना है और उनके एजेंट जो यहां बैठे उन तक पहुंचाना, पूरी कुव्वत के साथ जवाब देना है।
गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर पूरे मुल्क की जो सूरत हाल दहशतगर्दी के हवाले से रही है, लगता है ऐसा कि दहशतगर्दी जो है वो अमला उन्होंने मुल्क का कंट्रोल कर लिया है और हुकूमत उनके सामने बेबस नज़र आती है। कराची का वाक़या हो, उससे पहले एक दिन पहले जो वाक़या गिलगित में हुआ, ये तसलसल है उसी दहशतगर्दी का जो गुज़िश्ता 15 सालों से इस मुल्क में जारी है। मैं समझता हूँ मुल्क एक बहुत हसास दौराए पर पहुँच चुका, लिहाजा अगर चाहते हैं इस मुल्क की सालमियत, हम हुकूमत के साथ हर सतह पर तआवुन करने के लिए तैयार हैं, हर सतह पर उनके साथ मुआविन बनने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं इस मुल्क की सलामती, तो इसका एक वाहिद रास्ता है कि वो लोग जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हैं, जब तक इस मुल्क में सज़ा का अमल शुरू नहीं होगा, दहशतगर्दी का सिलसिला नहीं रुक सकता। 63 कातिलों की सज़ा के जो लेटर्स हैं वो पड़े हुए हैं जनरल हमारे जरदारी साहब की टेबल के ऊपर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। मैं चाहता हूं जब तक उन दहशतगर्दों को फांसी नहीं लगेगी और अमली तौर पर उनको सज़ाएं नहीं होंगी, इस मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। अमन व अमान कायम करने के लिए अमली इकदाम करना पड़ेगा। दावों से इस मुल्क पे जो है, फिर सिवाय दावों से मैं समझता हूं फिर इस मुल्क पे फातिहा पढ़ने नहीं चाहिए जो इस वक्त मुल्क की सूरत है।
यूनिवर्सिटी से आ रहे थे रैली के लिए यौम अल-क़ुद्स की, तो हम बाइक पे थे, जैसे ही सफारी पार्क के पुल जो है उसके एंड में आए, अचानक धमाका हो गया। लेफ्ट साइड पे जब हम उस तरफ ही जा रहे थे तो धमाका हो गया, उसके बाद हम जैसे उछल कर उड़ कर रोड के बीच में आकर गिर गए। उसके बाद धुआं था और कुछ पता नहीं चला। फिर हम जब उठकर देख रहे तो खून जो है हर तरफ से बह रहा था, मेरा खुद इधर से भी खून बह रहा था। मेरा दोस्त था इम्तियाज़, वो बहुत अच्छा इंसान था, हमारे साथ हर वक्त बैठता था। और इवन 10 मिनट पहले जो हम यूनिवर्सिटी से रवाना हो रहे थे तो एक दोस्त उसको एज अ मजाकन भी उससे ये कह रहा था कि आप शहीद क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि अस्तौर से अभी 25 लोग शहीद हो गए हैं, फलां से इतने, और आप लोग आपके गांव वाले शहीद नहीं होते हैं, इसकी क्या वजह है, आप शहीद हो जाओ। तो वो वहाँ पे बराबर आ गई 10 मिनट, मतलब 5 मिनट के बाद, यूनिवर्सिटी के वो सेकंड गेट से आगे सिपारी पार्क तक 5 मिनट का रास्ता है, तो वो वहाँ आकर बराबर हो गया। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये यौमुल कुदस है, ये बेसिकली यौम इस्लाम है, ठीक है। हम जो वहाँ पे जा रहे थे कोई सियासी पार्टी में नहीं जा रहे थे या अपने मफाद की, बल्कि यौमुल कुदस की रैली में क़िबलाए अव्वल की आज़ादी के लिए जा रहे थे। हमने अपना जो खून बहाया है वो क़िबलाए अव्वल की आज़ादी के लिए बहाया है। तो जो लोग मुलविस हैं वो आपके सामने है, उसका सरगना जो है अमेरिका है, इसराइल है, और उसके पाले हुए जो हैं हमारे सामने हैं। लेकिन उनको मैं अपना ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम कभी भी ये अपना मकसद जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? हम हुसैनी कौम हैं, हमारा ये मकसद शहीद होना ही है, हम डरने वाली कौम नहीं है। तो उनको ये जानना चाहिए कि कब तक मारेंगे। बस जवानों के लिए ये है कि अपनी मिल्लत के लिए कोशिश कर लो, बस मुत्तहिद हो जाओ। मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे तो फिर घर में घुसेंगे ये लोग, बस यही मेरा पैगाम।
जुमा नमाज पढ़ने के लिए गए थे कराची में से, जुमा नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुए तो बाहर आए, बाहर आने के बाद वहाँ से रैली निकल रही थी अलकुदस के लिए। वहाँ पे 25-30 के दरमियान बाइकें थी और पीछे टूड़ी की एक बस थी, आयशा वालों ने रखी थी अलकुदस जाने के लिए। वैसे पे आगे आगे टूड़ी से आगे बाइकों की रैली थी, उसमें हम जा रहे थे। जो ही सिपारे पार्क के करीब आए, जो ब्रिज थी उससे ब्रिज से आगे थोड़े ही फासले पे थोड़े आगे आए थे, धमाका हुआ। हाँ, मेरे दोस्त थे, मेरे अजीज़ वो मंजूर हुसैन, हम दोनों साथ ही थे। जुमा नमाज के लिए पहले कॉल करी थी मंजूर भाई, अब्बास टाउन में वो नमाज़ पढ़ाते हैं। मैं मस्कन आया, आने के बाद मैंने जब कॉल करी तो मंजूर भाई कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, जुमा नमाज का गुस्ल कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। वहाँ से हम दोनों साथ बाइक पर गए थे, मैं अलग बाइक पर था, मेरे पीछे एक दोस्त थे मेरे अली हैदर, हम दोनों साथ चले गए। वहाँ जुमा नमाज पढ़ी, वहाँ से बाहर आए, रैली के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, तो हम साथ ही थे, एक कदम के फासले पे था मेरा दोस्त मौलाना मंजूर साहब। जब सिपारी पार्क के करीब आए, जो क्रॉसिंग के लिए पुल बनी हुई है उससे थोड़े फासले पे ही धमाका हुआ। उस वक्त मुझे तो मेरा होश ठीक ठाक ही था, मैं जब उठा दूर गिरा था मेरे बाइक से, मैंने या अली मदद कहकर जब उठा देखा तो पीछे मेरे जो दोस्त थे अली हैदर, उसकी खून बह रहा था यहाँ से। मैंने उसको उठाया, फुटपाथ पर रखा, फिर वो मंजूर के पीछे जो बैठे हुए थे मेहदी, वो थे, वो बेचारा खुद गिरते थे ज़मीन पे, उठते थे खुद फुटपाथ की तरफ चले गए और साथ मंजूर सब।
मैं उनके पास नहीं जा सका, लेकिन वो वहाँ से पता नहीं लड़के उठा लिया, लेकिन हर कोई यही आवाज़ लगा रहा था कि लब्बे क्या हुसैन या अली मदद, या हर किसी की आवाज़ नहीं कर रही थी।
वहाँ से आगा खान लेके आए, वहाँ पे मुझे खबर पहुँची कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है। अगर थोड़ा कोशिश कर लेता तो पहुंच जाता, वहाँ गिरा हुआ था, उसकी बाइक गिरी हुई थी उसके करीब ही, वो भी गिरा हुआ था। हर किसी की आवाज़ यही नहीं कर रही थी कि लब्बे क्या हुसैन या हुसैन। बस سعادت حاصل کر لیا اللہ کو بہت ہی پیارا تھا. بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ مولا نے ہم سے چھوٹی امتحان لی ہے. ہاں بہت ہی پیارے تھے میرے بہت سے دوست یہاں مجھ سے ملے اور زار و قطار رو رہے تھے کاش کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جاتی. میں خود بھی رویا, میں نے کہا کہ کاش کہ وہ اللہ کو پیارا تھا, شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اس لیے مجھے شہادت نصیب نہیں ہو گئی. کل شام کو یہی ہماری باتیں ہو رہی تھی کہ راستے میں جو شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ دشمن چاہ رہی کہ ہمیں اسی طریقے سے ڈرا لے, یہ دشمن کی بھول ہے بلکہ یہ ان کی ہار ہماری جیت ہے کہ ہم شہادتیں پیش کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ہر کوئی لبیک یا حسین کہتا تھا. نہیں اس طریقے سے ہم دیر نہیں جاتے ہیں, یہ میرا عقیدہ ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ اگلے سال اگر القدس کی ریلی نکلے گی اس سے جوش و جذبے کے ساتھ اس سے زیادہ نکلے گی, جیسے کہ عاشورہ کے جلوس میں ہوا تھا تو اگلے سال وہاں پہ مجلس بھی ہوئی. بلکہ یہ ہے کہ اگر دشمن ہمیں چاہتا ہے کہ شہید کر دے, بلکہ وہ ایک بندے کو شہید کر دیتا تو وہ تین مجلسیں, یعنی غم حسین کو ختم کرنا چاہتا مجلسوں کو, ایک شہادت کر دیتا تو اس میں تین مجلسیں ہوتی ہے, سمجھ لو کہ وہ تین مجلسیں دے دیتا ہے. یعنی غم حسین کو ختم کرنا چاہتا لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب ایک شہادت کے گھر میں تین مجلسیں ہوتی ہے, دیکھیں تین مجلسوں کو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. غم کے لیے یہ پیغام دے دوں گا کہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھے, اس میں سعادت ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش مجھے شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی. جب تک جان میں جان باقی ہے, جب تک زندگی باقی ہے, تب تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں غم حسین کو آگے بڑھا دوں گا. دشمن جتنا چاہے, یہ اس کی بھول ہے, پیچھے سے وار کر رہا ہے وہ. سامنا آئے ہم سے مقابلہ کرے, مناظرہ کر کے ہمیں ہرا دینا, یہ پیچھے سے وار کرنا یہ اس کی ہار ہے, یہ اس کی شکست ہے, یہ ہماری جیت ہے, ہم آگے آ رہے ہیں. قوم کے ہر بچے کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ شہادتیں پیش کرے, تیار رہے, جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ بلا لیں گے. یہ بھی ایک پیغام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم امام حسین کے اس کربلا کے مقام پر نہیں ہوئے. ذرات ناحیہ میں ہم پڑھتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اگر ہم اس کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم رتبے پر فائز ہوتے. یہ بھی ایک کربلا ہے. آج بھی امام حسین بلا رہے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہمیں بلا لیں گے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر
الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد.